नमस्कार, भारत तारीख 4 नवंबर दिन बुधवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। असहिष्णुता पर सियासी पारा चढ़ा, संसद से राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस ने निकाला मार्च।
माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी खामोश रहे।
शाहरुख खान पर लगा पाकिस्तान परस्ती का आरोप, तो कर्नाटक के सीएम को मिली सिर कलम किए जाने की धमकी। और जानेंगे बिहार के चुनाव में कहां खड़ी है कांग्रेस।
हम बड़ा भाई हैं, छोटा भाई है, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारी आइडियोलॉजी मजबूत हो, कि हम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को इस प्रदेश में रोकें। हमने वो भूमिका हम निभा रहे हैं।
होंगी खबरें खेल की भी और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के देश में असहिष्णुता बढ़ने के आरोप लगाते हुए संसद से राष्ट्रपति भवन तक निकाले गए मार्च को सत्ताधारी भाजपा ने फायदे की राजनीति करार दिया है। कांग्रेसी नेताओं ने अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में बढ़ रही कथित असहिष्णुता के खिलाफ मार्च निकालकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ज्ञापन सौंपा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत एक अत्यधिक सहिष्णु और उदार देश और एक जीवंत लोकतंत्र है। सोमवार को बॉलीवुड के बड़े स्टार शाहरुख खान ने कहा था कि भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है। सहिष्णुता के मुद्दे पर कांग्रेसी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा,
the growing intolerance in the country, the divisive policy which the Sangh Parivar is...
देश में बढ़ रही असहिष्णुता, संघ परिवार की विभाजनकारी राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन हैं, जबकि उनके मंत्री समुदायों के खिलाफ खुलकर विवादित बयान दे रहे हैं। और जिस तरह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह बिहार में भाषण दे रहे हैं, ये एक खतरनाक संकेत है। देश के कई सामाजिक समूहों जिनमें लेखक, कलाकार, साहित्यकार और वैज्ञानिक शामिल हैं, चिंतित हैं और सरकार को बता रहे हैं कि देश में सब कुछ ठीक नहीं है। चीन और ताइवान के राष्ट्रपति पहली बार मुलाकात करेंगे। चीन ने शी जिनपिंग और ताइवान के राष्ट्रपति मा यिंग चियो के बीच इस ऐतिहासिक मुलाकात की पुष्टि की है। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात शनिवार को सिंगापुर में होगी। दोनों देशों का कहना है कि वार्ता का उद्देश्य ताइवान जलडमरू मध्य क्षेत्र के दोनों ओर शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। जर्मन कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन का कहना है कि प्रदूषण स्कैंडल के बाद से उसकी आंतरिक जांच में 800,000 और वाहनों में विसंगतियां पाई गई हैं। फॉक्सवैगन का कहना है कि शुरुआती अनुमानों के मुताबिक इससे उसे 2 अरब यूरो का और नुकसान हो सकता है। सितंबर में फॉक्सवैगन ने स्वीकार किया था कि उसके 1,10,00,000 कारों में त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयर लगाया गया जो प्रदूषण जांच नमूनों को प्रभावित कर सकता है। इस ऐलान के बाद कंपनी के शेयरों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। सऊदी अरब के दिवंगत शाह फहद की गुप्त पत्नी होने का दावा करने वाली फलस्तीनी मूल की एक महिला ने लंदन के हाईकोर्ट में 2.5 करोड़ पाउंड का हर्जाना जीता है। 68 वर्षीय जनान हर्ब का दावा है कि उन्होंने फहद के सऊदी शाह बनने से पहले 1968 में उनसे गुप्त रूप से विवाह किया था। उनका आरोप है कि शाह के एक बेटे प्रिंस अब्दुल अजीज ने सहमति जताई थी कि बाकी जिंदगी के लिए उनकी देखभाल की जाएगी। अदालत ने हर्ब को 1.5 करोड़ पाउंड का भत्ता और 1 करोड़ पाउंड की कीमत वाले चेल्सी और पश्चिमी लंदन के फ्लैट दिए जाने का आदेश दिया। प्रिंस अब्दुल अजीज को फैसले को चुनौती न देने की स्थिति में 4 सप्ताह के भीतर यह भुगतान करना है। बीबीसी समाचार।
स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी सेवा के कार्यक्रम नमस्कार भारत में। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ सुन रहे हैं bbchindi.com पर लाइव, और आपके साथ आज मैं हूं अशोक कुमार। भारत में असहिष्णुता को लेकर बहस लगातार तेज हो रही है। कल इसमें बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान का नाम भी जुड़ गया। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने शाहरुख खान पर पाकिस्तान परस्ती का आरोप लगाते हुए ये कह डाला कि वो रहते तो भारत में हैं, लेकिन उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है। दरअसल सोमवार को अपने 50वें जन्मदिन के मौके पर शाहरुख ने कुछ टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिया था, और उसमें उन्होंने कहा कि देश में पिछले कुछ दिनों में असहिष्णुता बहुत बढ़ी है। इसके बाद ही शाहरुख को लेकर कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट सामने आए। लेकिन बात यही नहीं थमी। चरमपंथी गुट लश्कर ए तैयबा के संस्थापक और पाकिस्तानी संगठन जमातुल दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने शाहरुख खान समेत उन तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान आने का न्योता दे डाला जो समझते हैं कि भारत में उन्हें परेशान किया जा रहा है। वैसे शाहरुख ना तो देश छोड़ने और ना ही उन्हें ऐसा करने की हिदायत देने वालों को कोई तवज्जो देते हैं। वैसे असहिष्णुता के मुद्दे पर कल दिन भर राजनीति के अखाड़े में भी कुश्ती होती रही। पूरा ब्यौरा सुनिए मोहनलाल शर्मा से।
असहिष्णुता के मुद्दे पर जारी बहस के बीच कांग्रेस सांसद कल सड़क पर उतरे, संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाए कि हाल की घटनाएं समाज को बांटने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा,
माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी खामोश रहे, जो इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि उनकी इन सब घटनाओं से सहमति है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाए। राहुल बोले कि ये हर भारतीय से जुड़ा मामला है, हम जो चाहते हैं उसे बयान करने का सामर्थ्य चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को ये पसंद नहीं। वो बोले,
द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक हैज सेड इट, द प्रेसिडेंट हैज सेड इट, पीपल हैव गिवन अप देयर प्राइजेस।
रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस बात को कहा, राष्ट्रपति ने भी कहा, लोगों ने अपने पुरस्कार लौटा दिए। प्रधानमंत्री और उनके वित्त मंत्री मानते हैं कि देश में कुछ नहीं हो रहा, वो मानते हैं कि सब कुछ ठीक है, यही समस्या की असल वजह है। क्या वो ऐसी विचारधारा में भरोसा करते हैं जो सहनशील नहीं है? ये दूसरों को सुनने में भरोसा नहीं करती, ये दूसरों के विचारों को सम्मान देने में भरोसा नहीं करती, यही वो बात है जिसका हम सब अनुभव कर रहे हैं।
इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के विरोध मार्च पर सवाल उठाए थे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने विरोध मार्च की वजह रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हो रही जांच को बताया। उन्होंने कहा,
फेसबुक के अकाउंट में जो रॉबर्ट वाड्रा जी ने लिखा है, आज के मार्च का सारांश है इनटॉलरेंस टुवर्ड्स इन्वेस्टिगेशंस। जो इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, जो एक्सपोजर हो रहा है गांधी परिवार को लेकर, एक एक करके जो कबर्ड में स्केलेटन बंद थे वो सामने आ रहे हैं, तो जो इंटॉलरेंस है परिवार में इन्वेस्टिगेशन को लेकर, वो इंटॉलरेंस के कारण नवंबर के महीने में मार्च हो रहा है।
वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर से दोहराया है कि देश में कहीं असहनशीलता की समस्या नहीं है, उन्होंने इसे लेकर राजनीति न करने की सलाह दी।
देखिए, मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया कि देश में पूर्ण शांति है, सद्भाव की भावना, सद्भाव का माहौल है, और इस देश ये कभी देश इंटॉलरेंट रहा नहीं है और कभी रहेगा नहीं, और इसलिए राजनीतिक कारणों से इस विषय को उठाने का कोई लाभ नहीं है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस के असहनशीलता के मुद्दे पर सवाल उठाने की आलोचना की थी। हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो असहनशीलता और धमकी के माहौल के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रहेगी।
ये थी मोहनलाल शर्मा की रिपोर्ट। उधर कर्नाटक के शिवमोगा में कल एक स्थानीय भाजपा नेता ने राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का सिर कलम करने की धमकी दी। भाजपा के स्थानीय नेता एस एन चन्नबसप्पा ने धमकी दी कि अगर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया शिवमोगा शहर में बीफ खाएंगे तो उनका सिर काट दिया जाएगा। हालांकि इस धमकी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी जानकारी के साथ बेंगलोर से इमरान कुरैशी।
चन्नबसप्पा ने शायद यह नहीं सोचा था कि उनके खिलाफ पुलिस FIR दर्ज करेगी, लेकिन शिवमोगा में उनका भाषण TV चैनल और सोशल मीडिया पर फैल गया। चन्नबसप्पा की धमकी इस प्रकार की थी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर वह चाहे तो बीफ खाएंगे और कोई उन्हें नहीं रोक सकता। शिवमोगा के गोपी चौराहा पर उन्हें खाने दें और अगर वह ऐसा करते हैं तो उनका सर काट दिया जाएगा। ये थे चन्नबसप्पा के शब्द। वहीं इस मामले पर सिद्धरमैया का कहना था कि कोई उनको धमका नहीं सकता।
समाज दल्ले नानो
BJP इन्हीं बातों के लिए जानी जाती है और इसीलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। ये लोग असहनशीलता के लिए जाने जाते हैं। जो लोग भड़काव और असहनशीलता फैलाने वाले बयान देंगे, सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। कोई मुझे धमका नहीं सकता। ये थे सिद्धरमैया के शब्द। उनके बयान के कुछ घंटों बाद पुलिस ने चन्नबसप्पा को हिरासत में ले लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने चन्नबसप्पा के बयान से अपने आप को दूर कर लिया है। राज्य में पार्टी अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी है कि इस तरह के बयान नहीं दें। सवाल इतना ही है कि क्या बीफ के मुद्दे पर बीजेपी का रुख बदल रहा है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
और इसके बाद अब रुख करते हैं बिहार का, जहां कल पांचवें और आखिरी चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान थम गया। लगभग दो महीने तक चले इस अभियान में महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गठबंधन के नेताओं ने बात तो विकास के नारे के साथ शुरू की थी, लेकिन उसके बाद व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। आरक्षण, बीफ, वंशवाद से लेकर आतंकवाद तक के मुद्दे उठाए गए। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी वत्सल राय ने वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी से बात की और पूछा कि बिहार में इस बार का प्रचार पहले के चुनावों के मुकाबले कितना अलग रहा।
बिहार का ये जो चुनाव रहा, इसमें जो प्रचार है वो पूरी तरह से हाईटेक रहा। कंसल्टेंट्स इसमें शामिल रहे, जो पहले बिहार के चुनाव में नहीं हुआ करते थे। पूरी तरह से पॉलिटिकल लोग प्रचार तय करते थे, लेकिन इस बार जो पॉलिटिकल स्पिनर्स हैं उन लोगों ने प्रचार की दिशा तय की। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस चुनाव में बदजुबानी बहुत ज्यादा हुई, जो बिहार में पहले नहीं होती थी।
पांचों चरण के चुनाव के पहले मुद्दे लगातार बदलते रहे, इसे आप कैसे देखते हैं?
जो विकास की बात शुरू हुई थी, खासकर प्रधानमंत्री ने जो एक पैकेज घोषित किया, विशेष पैकेज घोषित किया, और उसको लेकर के जोर शोर से कैंपेनिंग शुरू की गई, लेकिन उसके जवाब में नीतीश कुमार ने भी विकास की बातें की और नीतीश कुमार ने 7 सूत्रीय एक संकल्प प्रस्तुत किया कि हम आएंगे तो 5 साल तक ऐसे काम करेंगे। और फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। नीतीश कुमार ने कहा कि जो विशेष पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो रीपैकेजिंग है। असली टर्निंग प्वाइंट आया भागवत जी ने जो बयान दिया आरक्षण को लेकर, कि वो आर्थिक आरक्षण के पक्षधर हैं और मौजूदा व्यवस्था को की समीक्षा होनी चाहिए। शुरू में तो भाजपा की तरफ से इस पर कोई बात नहीं की गई, लेकिन लालू जी ने इस मुद्दे को लगातार उठाया। जब भाजपा को लगने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही, तब बहुत तेजी से इसको ठीक करने की कोशिश की जाने लगी। तो एक चरण तो यहाँ पर खत्म हुआ कि जो बदलाव हुए, कि आरक्षण का मसला आया, उसका खंडन हुआ, प्रधानमंत्री इस स्तर पे आकर के आरक्षण पे उन्होंने सफाई दी। दूसरा रहा बीफ का मसला, दादरी का मसला, जिस पर ये बदजुबानी शुरू हुई। जब तीसरे चरण का चुनाव हो गया, उसके बाद एक्रीमोनी बहुत बढ़ गई और एनडीए की तरफ से कंटिन्यूअस आतंकवाद, पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, सियासी सर्कल यहाँ पल रहा है, यहाँ के जो लोग लालू नीतीश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं, इस तरह के विज्ञापन भी छपे। कहीं ना कहीं जो यहाँ के सारे सर्वे में आया कि जो बिहार का सबसे बड़ा नेता है नीतीश कुमार, उस नेता ने कम से कम बदजुबानी नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। एक बहुत अच्छी बात ये रही इस प्रचार की, पूरा देश बिहार के बारे में जान गया, जो शायद पहले नहीं जानता था कि बिहार कैसा है। बहुत सारी गलतफहमियां थी, तो बहुत सारी चीजें पता चल गई कि बिजली आती है यहाँ, सड़कें यहाँ अच्छी, तो ये सारी चीजें जान गया।
भाषा की मर्यादा का जहाँ तक सवाल है, दोनों गठबंधन ने उसको तोड़ा। बिहार जो है सबसे ज्यादा जागरूक प्रदेशों में गिना जाता है राजनीतिक तौर पर, वहाँ इस तरह का जो प्रचार चला, इसे आप अपने लोकतंत्र के लिए किस तरह से देखते हैं, किस तरह का संकेत है ये?
दरअसल इस तरह का कटुतापूर्ण प्रचार और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए, किसी भी समाज के लिए बहुत शुभ संकेत है। लेकिन जैसा आपने कहा कि बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं, तो राजनीतिक तौर पे भी बहुत जागरूक हैं, तो समझदार जनता की वजह से इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये चीजें अच्छी तो नहीं है लोकतंत्र के लिए और किसी भी समाज के लिए।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी, जो विश्लेषण कर रहे थे बिहार में चुनाव प्रचार के तरीकों का। बिहार में पांचवें और आखिरी चरण में कल 9 जिलों की 57 सीटों पर चुनाव होना है। इस चरण में जिन जिलों में वोट पड़ेंगे उनमें मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज शामिल हैं। बिहार में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी इस बार 41 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी में खूब उत्साह है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के आगे कांग्रेस की चर्चा कम ही है। हमारे सहयोगी पंकज प्रियदर्शी ने बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौधरी से मुलाकात की और ये पूछा कि पार्टी प्रचार में उतनी क्यों नहीं दिखी।
नहीं, ऐसा है कि पूरी तरह से जो देखना चाहता है उसको दिखता है, जो नहीं देखना चाहता उसको नहीं दिखता है। पूरी
तरह से दिखना चाहिए ना, दिखने दिखाने की कोशिश कीजिए।
पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत लगाई हुई है और मैं समझता हूँ कि टोटल अभी तक जो प्लान्ड है 16 तो राहुल जी और सोनिया जी की मीटिंग हुई हैं। हम 40-41 सीटों पर लड़े हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी, मीरा कुमार जी, राज बब्बर, संजय निरुपम सब लोग प्रचार कर रहे हैं, इसलिए नहीं दिखने का तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही हम लोगों के लिए नहीं है कि हम दिख नहीं रहे हैं।
ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। बीच में जो राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में वो प्रतिलिपि फाड़ी थी और उसके बाद ज़्यादा झुकाव पार्टी का नीतीश कुमार की ओर दिखता रहा है, जबकि 17 साल तक वो भाजपा के साथ रहे हैं जिसको कांग्रेस पार्टी पानी पी पी के कोसती है। इतनी जल्दी नीतीश कुमार पे आपको भरोसा हो गया?
देखिए, जो लोग कहते हैं कि हम पानी पी पी के कोसते हैं, वो हमारा आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस है। हम भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को पचा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर के इस संस्कृति को, इस गंगा जमनी संस्कृति को बचाने का काम किया। जहाँ तक सवाल है नीतीश जी का, नीतीश जी ने जो 10 वर्षों में काम किया, ये बात सही है कि नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, रामविलास पासवान, उन्होंने गोधरा जैसे इशू पर इस्तीफा किया था केंद्रीय मंत्रिमंडल से, जीतन राम मांझी।
लेकिन एक मिनट में बीच में रुक रहा हूँ, लेकिन ये तर्क अजीब नहीं लगता है कि कहीं कोई गलत उदाहरण हो तो आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो उदाहरण क्यों? कांग्रेस पार्टी तो आप जैसा कह रहे हैं आइडियोलॉजी की पार्टी,
बिल्कुल
हम रामविलास पासवान से तुलना क्यों
नहीं? इसलिए हम कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रेस ये बार बार इन इश्यूज को उठाता है कि भाई आप नीतीश जी के साथ कैसे चले गए, आप बेमेल है आपका गठबंधन, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़्यादा जोर से बोलते हैं। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनसे ही हम पूछना चाहते हैं कि ये मेल गठबंधन तो आपका है, हमने नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद जब उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, तो निश्चित रूप से अब जब हम इस प्रदेश में कमज़ोर हैं और हमें को बड़े आदमी से लड़ना है, बीजेपी से हम लड़ना चाहते थे, तो निश्चित रूप से हमने अपना गठबंधन बनाया स्ट्रॉन्ग, सो दैट कि वी कैन विल बी एबल टू स्टॉप बीजेपी।
लेकिन इसका मतलब यह है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, सत्ता सुख भोगे, साझेदार रहे, लेकिन वो हट जाएगा तो उसके सारे गुनाह माफ़?
नहीं, सारे गुनाह माफ़ ये तो बहुत सिंपल बात, आप जो बात कह रहे हैं बहुत सिंपल है। ये पॉलिटिक्स इतना 2+2=4 पॉलिटिक्स नहीं होता है। पॉलिटिक्स तो स्थिति और परिस्थिति को देख कर होता है। आज के डेट में 2014 के चुनाव के बाद जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी के फैलाव को रोकने के लिए जो हम गठबंधन बना सकते थे उस गठबंधन को हमने बनाया, तो हमारे लिए बीजेपी को रोकने के साथ साथ इस प्रदेश में एक इफेक्टिव प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर देना भी हमारी जवाबदेही थी, क्योंकि हम उतनी सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं कि मैं खुद का मुख्यमंत्री दूँ, तो मेरी ये जवाबदेही है कि हम एक इफेक्टिव प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर दूँ, इसलिए हमने नीतीश जी के साथ अलायंस किया।
लेकिन लालू यादव का जिक्र भी नहीं होता है कांग्रेस नेताओं की ओर से?
नहीं, ये टोटल गलत है। ये भी एक तरह से प्रचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के। हम राहुल जी के हर मीटिंग में हैं, राहुल जी हर मीटिंग में।
सच्चाई ये भी है कि चारा घोटाले में जब वो कन्विक्ट हुए थे फाइनली, तो राहुल गांधी उस पर नाराज भी थे और गठबंधन से दूर होने में उनकी एक महती भूमिका थी, और विधेयक की प्रति जो फाड़ी गई थी उसके बाद तो रिश्ते थोड़े तल्ख तो हुए थे, इसमें तो सच्चाई।
देखिए, ऐसा है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उससे बात करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। हम साथ हैं, साथ खड़े हैं, स्ट्रांगली वी आर ऑल टुगेदर, एंड ऑफ द स्टोरी।
एक बड़े भाई की भूमिका रही है कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर। पार्टी कितना आत्मचिंतन करती है कि क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि राज्य में वो छोटे भाई की भूमिका निभा रही है आज के डेट में?
देखिए, यहाँ बड़े भाई और छोटे भाई की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ईगो इशू नहीं है, यहाँ ईगो इशू ये है कि हम अपने
पार्टी के स्तर की बात
नहीं, पार्टी के स्तर पर ही कह रहे हैं।
पार्टी, हर पार्टी का लक्ष्य होता है कि खुद के बलबूते पर सरकार,
बिल्कुल हर के बलबूते पर सरकार बनाने का हर पार्टी का लक्ष्य होता है, लेकिन यहाँ पर हम जब भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, जिस आइडियोलॉजी के लिए महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी लोगों ने शहादत अपनी दी, उस आइडियोलॉजी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, उसके लिए हमने साथ बनाया, इसलिए हम बड़ा भाई हैं, छोटा भाई हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारी आइडियोलॉजी मजबूत हो, कि हम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को इस प्रदेश में रोकें, हमने वो भूमिका हम निभा रहे हैं।
ये थे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चौधरी और इनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता पंकज प्रियदर्शी। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। आने वाले शनिवार को सिंगापुर में चीन और ताइवान के राष्ट्रपतियों की मुलाकात होनी है। पहली बार दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की ये सीधी मुलाकात होगी। कितनी अहम है ये मुलाकात, सुनिए बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा दिलनवाज पाशा से।
ताइवान का कहना है कि उसके राष्ट्रपति मा इंगचियाओ शनिवार को सिंगापुर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात होगी। ताइवान के एक प्रवक्ता ने बीबीसी से कहा है कि दोनों नेता ताइवान जलडमरू मध्य के दोनों ओर के रिश्तों पर बात करेंगे। ताइवानी प्रवक्ता चेन यी शिन ने कहा कि राष्ट्रपति मा का उद्देश्य ताइवान क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देना और यथास्थिति बनाए रखना है। 1949 में कम्युनिस्टों के हाथों हार के बाद चीन की राष्ट्रवादी सरकार ताइवान द्वीप चली गई थी। तब से ही चीन ताइवान पर अपना दावा ठोकता रहा है। चीन का दावा है कि ताइवान उसकी संप्रभुता वाला क्षेत्र है। चीन ताइवान में पूर्ण स्वतंत्रता के किसी प्रयास को सैन्य ताकत से कुचलने की चेतावनी भी देता रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट ने कहा है कि अमेरिका तनाव कम करने और संबंध सुधारने के प्रयासों का स्वागत करता है। उन्होंने कहा,
The fundamental interest of the United States is in a stable and peaceful cross-strait relationship.
अमेरिका का हित ताइवान क्षेत्र में दोनों ओर शांतिपूर्ण और स्थिर संबंधों में है, इसलिए आप जानते हैं कि हम ताइवान जलडमरू मध्य के दोनों ओर से तनाव कम करने के सभी प्रयासों का स्वागत करेंगे। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इस बैठक से निकलेगा क्या। राष्ट्रपति मा के शासनकाल में ताइवान और चीन के संबंधों में सुधार हुआ है। उनकी पार्टी कुओमिंगटांग यानी KMT को चीन समर्थक माना जाता है। हालांकि संवाददाताओं का कहना है कि चीन के बढ़ते प्रभाव से ताइवान में असंतोष भी पनपा है। पिछले साल हुए स्थानीय चुनावों में KMT को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। नतीजों को राष्ट्रपति मा की चीन समर्थक नीतियों को नकारे जाने के रूप में भी देखा गया था। राष्ट्रपति मा अगले साल पद छोड़ देंगे। खराब रेटिंग के कारण KMT ने अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को भी इसी महीने हटा दिया था। विशेषज्ञों का कहना है कि KMT के चुनाव हारने की स्थिति में चीन राष्ट्रपति मा के साथ मुलाकात को संबंध सुधारने के लिए अंतिम प्रयास के रूप में देख सकता है। ताइवान को अपने संप्रभुत्व वाला क्षेत्र मानने वाला चीन इस बात पर जोर देता रहा है कि दुनिया के बाकी देश दोनों देशों के साथ एक साथ राजनयिक संबंध नहीं रख सकते हैं। इस समय ताइवान के संयुक्त राष्ट्र सदस्यता वाले सिर्फ 21 देशों से ही राजनयिक संबंध हैं। ताइवान के पास संयुक्त राष्ट्र में भी सीट नहीं है। ताइवान दोबारा संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता पाने के लिए कई बार नाकाम प्रयास कर चुका है।
ये थे दिलनवाज पाशा, आपको सुना रहे थे बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार। और अब बारी प्रेस में, आज क्या कुछ छपा है, दिल्ली से छपने वाले अखबार आज किन सुर्खियों से अटे पड़े हैं, हमें बताएंगे दिलनवाज पाशा, क्या कुछ है अखबारों में।
जी अशोक, आज के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर एक खबर है, कल संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो कांग्रेस के नेताओं ने मार्च किया था और असहिष्णुता का मुद्दा बनाकर, इसी पर नई दुनिया लिखता है PM की चुप्पी सहमति जैसी। वहीं हिंदी अखबार जनसत्ता ने इसी पर लिखा है, जेटली ने आश्चर्य जताते हुए पूछा असहिष्णुता कहाँ है, और इसी में नीचे कॉलम लगाकर लिखा है, यहाँ है असहिष्णुता, सिद्धारमैया का सिर काटने की धमकी दी भाजपा नेता ने। एक और खबर जो सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है वो है, 11 महीने पहले दिल्ली में एक टैक्सी में बलात्कार करने वाले उबर के ड्राइवर को 30,000 कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। ये खबर भी लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। नई दुनिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्यापम घोटाले के कथित आरोपियों के अफसरों के खाते विदेशी बैंकों में हैं। यह विशेष रिपोर्ट है जो CBI की जो जांच चल रही है उससे मिली जानकारियों के आधार पर है।
व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश वाला।
जी जी जी। और एक और खबर जो ध्यान खींच रही है, नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है, कल DND पर 4 घंटे जाम लगा रहा।
मैंने सुना एम्बुलेंस भी एक नेताजी थे वो नए मंत्री बने उनके स्वागत में ये जाम लगा था,
लेकिन इसी लगे जाम में 4 एम्बुलेंस फंसी थी और एक मरीज की दुखद मौत भी हो गई। शायद अस्पताल वक्त पर पहुंचने से उनकी जान बच सकती थी। इसी घटना को हिंदुस्तान अखबार ने अंधेर गर्दी करार दिया है। और अब जिक्र हिंदुस्तान की ही एक और खबर का, जिसके मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कहा है कि भारत हमारे मामलों में दखल ना दे।
यानी बराबर जो तनाव था वो बना हुआ है भारत और नेपाल के बीच, हालांकि अब सीमा खुल गई है।
जी बिल्कुल। और दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए दुष्कर्म से मां बनी 13 साल की एक बच्ची की जो औलाद है उसको नौकरी और पढ़ाई की व्यवस्था करने का आदेश सरकार को दिया है। और एक और खबर जो ध्यान खींच रही है, राजस्थान के एक पूर्व विधायक गुरचरण छावड़ा जो शराबबंदी के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे थे उनकी मौत हो गई, इस खबर को भी अखबारों ने जगह दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट से जो केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ एक कानून होना चाहिए, ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है और इसी को सुर्खी बनाया है द टाइम्स ऑफ इंडिया ने। और एक और खबर जो आज के अखबारों में अलग अलग अखबारों में पहले पन्ने पर है वो है छोटा राजन से जुड़ी हुई, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन
भारत लाने की कोशिश,
भारत आएंगे। रिपोर्टों के मुताबिक उनको पहले दिल्ली लाया जाएगा और उसके बाद उन्हें मुंबई ले जाया जा सकता है। और अमर उजाला की एक रिपोर्ट का मैं जिक्र करना चाहूंगा जिसके मुताबिक भारत में पहली बार जो पहलवानी है प्रो पहलवानी उसके खिलाड़ियों की बिक्री हुई है,
यानी और पहलवानी की भी लीग शुरू हो रही है। लाखों में पहलवान बिके हैं मैंने सुना है।
जी बिल्कुल, सुशील से ज्यादा दाम योगेश्वर को मिले हैं, योगेश्वर करीब 40 लाख रुपए में बिके हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा अखबारों की तमाम सुर्खियों के लिए और उनका विश्लेषण के लिए। और अब बारी है खेल की खबरों की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोनों टीमें गुरुवार से मोहाली में शुरू होने जा रहे पहले टेस्ट मैच में आमने सामने होंगी। इस सीरीज पर सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें लगी हुई हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही मैच से पहले मोहाली में जमकर नेट पर अभ्यास कर रही है। मोहाली में मौसम धीरे धीरे ठंडक पकड़ रहा है लेकिन दोनों टीमों में पिच को लेकर गर्मी बन रही है। अफ्रीकी टीम तो पहले कह चुकी है कि आर अश्विन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे। अब खतरनाक तो वो स्पिन की मददगार पिच पर ही होंगे जिसका अंदाजा अफ्रीकी टीम को है। कल अभ्यास सत्र के बाद भारतीय टीम के टेक्निकल डायरेक्टर रवि शास्त्री ने भी इशारों में ही कह ही दिया कि मोहाली में कैसा विकेट मिलने जा रहा है।
मैं तो पिच नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन द पिचेस येट, आई हैव जस्ट कम। In fact, if you can see on the outside, it's covered at the moment.
मैंने पिच नहीं देखी, आप देख सकते हैं कि वो कवर से ढकी है। आप अगर घरेलू पिच की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि अपने घर में आपको अपनी ताकत पर खेलना चाहिए। आप दुनिया में किसी भी जगह खेलें वहाँ ऐसा ही होता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पिच कैसी है, लेकिन हमारे सामने एक बेहद शानदार सीरीज है खासकर पिछले 10 वर्षों में। ऐसा इसलिए है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने पिछले कुछ सालों में जैसे क्रिकेट खेली है। रवि शास्त्री के शब्द। अब पिच चाहे जैसे भी हो लेकिन खेलना तो जमकर ही होगा। दक्षिण अफ्रीकी टीम तो अपना जलवा 2020 और एक दिवसीय सीरीज जीतकर दिखा ही चुकी है। वहीं शारजाह में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान ने कल इंग्लैंड के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 146 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 306 रनों पर समाप्त हुई और उसे 72 रनों की बढ़त मिली। अब पाकिस्तान के पास 74 रनों की बढ़त है और उसके 7 विकेट बाकी है। लेकिन जिनका खेल समाप्त होने के बाद शोएब मलिक ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहकर सबको हैरान कर दिया। हालांकि शोएब मलिक ने पहली पारी में 38 रनों की उपयोगी पारी खेली लेकिन वो दूसरी पारी में एंडरसन की गेंद पर बिना कोई रन बनाए LBW हो गए। इससे पहले शोएब मलिक ने इंग्लैंड के खिलाफ इसी सीरीज के पहले टेस्ट मैच में 245 रनों की पारी खेली थी जो उनका सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर भी है। वैसे शोएब मलिक की 5 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई थी। शोएब मलिक ने अपने टेस्ट करियर में 34 टेस्ट मैच खेले और 3 शतक और 8 अर्धशतक की मदद से 1,860 रन बनाए। वो तब और भी चर्चा में आए जब उनका विवाह भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा से हुआ। वैसे शोएब मलिक अभी 2020 और एक दिवसीय क्रिकेट खेलते रहेंगे और उनका उद्देश्य साल 2019 में होने वाले एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलना है।
और कार्यक्रम के समापन से पहले मुख्य समाचार।
चीन और ताइवान के राष्ट्रपति पहली बार मुलाकात करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ताइवान के राष्ट्रपति मा यिंग चेओ के बीच ये ऐतिहासिक मुलाकात शनिवार को सिंगापुर में होगी। जर्मन कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन का कहना है कि प्रदूषण स्कैंडल के बाद से उसकी आंतरिक जांच में 8 लाख और वाहनों में विसंगतियां पाई गई हैं। सऊदी अरब के दिवंगत शाह फहद की गुप्त पत्नी होने का दावा करने वाली फलस्तीनी मूल की एक महिला ने लंदन के हाईकोर्ट में 2.5 करोड़ पाउंड का हर्जाना जीता है। ब्राजील में 2014 फुटबॉल विश्व कप के आयोजनकर्ताओं ने करोड़ों डॉलर की रिश्वत लेने के आरोपों से इनकार किया है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार भारत में अभी के लिए बस इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी ठीक एक घंटे बाद विश्व भारती कार्यक्रम में, और आपको सुनाएंगे खास रिपोर्ट बिहार से कि चुनाव नतीजे आए नहीं हैं कि फूल वालों को अभी से ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। अभी के लिए विदा। इस कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला हेमंत कुशवाहा ने। नमस्कार।